वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री निताय गौर हरि की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वकदान्तिकं श्रीगुरुः। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकुलकतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। देखिए आप सबके मंगलाचरण के बाद एकदम उजाला आ गया। कैसे तमसोमा ज्योतिर्गमया हो गया। एक प्रश्न आप सबसे करते हैं। अभी आप सब जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी का महत्व क्या है, है ना? फिर भी श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं लिया गया भागवत में। क्यों नहीं लिया गया?
सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी यदि राधा रानी का नाम लिया होता तो वो भाव में आके भागवतम पूर्ण नहीं होता।
क्योंकि वो रसिक भक्त थे वृंदावन के, और श्रीमती राधा रानी का नाम का उच्चारण यदि करते तो इतने भाव विभोर हो जाते कि बेहोश होकर गिर पड़ते उधर, और बेहोश हो जाते तो कितने समय तक बेहोश हो जाते होते रहते उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन उनका एक उनकी एक सेवा थी, परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाना था। अभी यदि वो 7 दिन का समय ही था उनके पास, परीक्षित महाराज के पास, अभी ये 7 दिन में बेहोश होकर गिर पड़े तो फिर भागवतम का क्या होगा, परीक्षित महाराज का क्या होगा? तो फिर उनको बहुत सावधान रहना चाहिए था कि राधा रानी का नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो भाव में बेहोश हो जाएंगे। और वैसे भी 7 दिन तो थे, लेकिन वास्तव में वृंदावन लीला के लिए कम समय मिला, क्योंकि बाकी सब लीला वैकुंठ लीला का वर्णन तो करना था ना भागवतम में, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पृथु महाराज, भगवान के अन्य अवतार, वामन देव, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, इन सब का भी अब सब वर्णन करना था। क्यों करना था? सीधे भागवत में केवल वृंदावन लीला क्यों नहीं हुआ? 12 स्कंद 10 स्कंद केवल वृंदावन लीला। अभी क्या होता है, 12 स्कंद है, 12 स्कंद में से 10वें अध्याय के लगभग आधा से थोड़ा कम, लगभग आधा समझ लीजिए वो वृंदावन लीला है। तो इतना ही है बस, जितने भी 40 या जितने भी थोड़े बहुत लीला है उतने वृंदावन लीला है। तो इतना ही क्यों किया है शुकदेव महाराज ने? वो वृंदावन के इतने रसिक भक्त हैं, वृंदावन को बहुत पसंद करते हैं, फिर भी वृंदावन लीला इतना ही बताया, बाकी इतना सब 12 स्कंद में किया क्यों?
क्योंकि वहाँ पे परीक्षित महाराज के अलावा अन्य लोग भी थे जिनके लिए भी उनको बताना पड़ता है। परीक्षित महाराज को वृंदावन लीला हो जाता, लेकिन बाकी लोगों को सिर्फ वृंदावन भगवान श्री कृष्ण से आकर्षण नहीं था, बल्कि कुछ ब्रह्मवादी थे, कुछ मायावादी भी थे, कुछ वैकुंठ नारायण के भी भक्त थे, तो सब को
योगी जन भी थे, वैरागी थे,
तो उन सब के लिए भी कथा बन और उनको आकर्षित करना था वृंदावन।
बहुत अच्छा। तो वहाँ पे जो भरी सभा थी, बहुत सारे ऋषि मुनि वगैरह आए हुए थे। कहाँ से आए थे? केवल बेलगाम से नहीं, सारे ब्रह्मांड से आए थे। सब ने खबर सुनी कि अभी ऐसे कथा होने वाली है, तो जगह जगह से सब आए। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको देखा कि पहचान गए कि ये सारे के सारे एक वृंदावन भक्त की बात तो दूर है, ये लोग भक्त भी नहीं है बहुत सारे इनमें से। कोई योगी है तो कोई ज्ञानी है तो कोई कर्मकांडी है तो कोई वैरागी है, कोई क्या कोई क्या। तो अभी सीधे वृंदावन लीला तक पहुंचते तो कैसे होता? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको साथ में ले जाना ठीक समझा। तो इसलिए उनको धीरे 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 से सारे बातों को विराट रूप के बारे में बताना पड़ा। जो ज्ञानी लोग वगैरह बहुत, योगी लोग बहुत इसको पसंद करते हैं। और धीरे धीरे से फिर कृष्ण परम सत्य है पहली बात, फिर भगवान कृष्ण की भक्ति करना ये उद्देश्य है, फिर सकाम भक्ति और शुद्ध भक्ति या मिश्र भक्ति और शुद्ध भक्ति में अंतर भी दिखाना था, मिश्र भक्तों का उदाहरण, शुद्ध भक्तों का उदाहरण, फिर वैकुंठ भाव कैसा है, महान शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, फिर विभिन्न अवतार, इतना सब करना था। फिर तब 9 स्कंद लगे सारे साधुओं को उस स्तर तक उठा के ले आने के लिए, ताकि वो वृंदावन लीला समझने के लिए योग्य हो जाए तब फिर उन्होंने वृंदावन लीला बोली। इसलिए समय तो वैसे भी ये 9 स्कंद के लिए कितना समय गया, और उसके ऊपर राधा रानी का नाम लेते तो फिर कुछ भी समय नहीं रह जाता। इसलिए परीक्षित महाराज को भागवत सुना रहा है और बहुत सारे अन्य लोग भी बैठे हैं, उनके सामने राधा रानी का नाम लेके भाव विभोर हो जाएंगे, ये लोग गलत समझेंगे। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से लिया। वैसे इधर उधर दिखाई पड़ता है संकेत, परंतु एक श्लोक में खास करके राधा रानी का नाम आता है, परंतु एक छुपे हुए रूप में। किसी को मालूम है कौन सा श्लोक है वो? बोलो, किसी को मालूम है ये श्लोक? आदिरस का श्लोक अच्छा लगता है।
भगवान देवी ईश्वरा यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्वः।
प्रीतो याम
प्रीतो यामन यद्वः
यद्वः, बहुत अच्छा। तो क्या अर्थ है इसका?
अर्थ सीधा नहीं बताऊं, ऐसे श्लोक में समझाते उसका।
ये श्लोक पठन करते हो ना, पठन भी करो और उसका शब्दार्थ भी समझ लो, ताकि उसको याद रखने भी अच्छा रहेगा और श्लोक समझ में आएगा। हाँ बोलो।
जो वहाँ पर जो ये थी गोपिया, तो भगवान जब ये हो गए वहाँ से जुस हो गए, तो उसके बाद श्रीमती राधा रानी को के साथ वो गए थे ना, उनके साथ गए थे, तो ऐसे बताया।
हाँ बात सही है, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के साथ गए थे, तो बाकी गोपियां बोल रही हैं अनया मतलब इसके द्वारा, इनसे इनसे किनसे? वो एक गोपी, इसका नाम नहीं लिया अभी तक, वो एक गोपी जिनके द्वारा श्री कृष्ण आराधित है। आराधित मतलब आराधना। ये गोपी जिसके द्वारा श्री कृष्ण सर्वोत्तम रीति से आराधित है, अनया आराधित है। और किनका? भगवान हरि ईश्वर है। भगवान या हरि या ईश्वर को जिनके द्वारा ये आराधित है, गोविंद यन्नो विहाय, जिनके कारण हमको त्याग कर वो क्या चली गई? प्रीतो याम, क्योंकि उनके साथ प्रीति ज्यादा थी तो अनयत ले गए, रहा है एक एकांत स्थान में। तो भगवान कृष्ण क्या किया, वो गोपी को साथ में अलग से ले गए। किनको? उस गोपी को जिनके द्वारा श्री कृष्ण सबसे अच्छी तरह से आराधित है, इसलिए उनके कारण हम सबको त्याग के वो चले गए एकांत स्थान में उनके साथ, हम सबको छोड़ के। यन्नो विहाय, विहाय मतलब उनको त्याग करके। तो ये आराधित शब्द में राधा शब्द आता है ना, आराधित, तो राधा फिर वहां आता, आराधित आराधना। तो राधा मतलब जो जिनकी आराधना भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए उनका नाम राधा है, राधा रानी। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी थोड़े ढके हुए ढंग से, थोड़े अप्रत्यक्ष रूप से राधा रानी का नाम लिया था, परंतु थोड़ा छुप के लिया एकदम से। तो समझने वाले को समझ में आता है, जिसको नहीं समझ में आता वो नहीं समझेगा। इसलिए आचार्यों की टीकाओं की आवश्यकता है, ताकि हम ये सब समझ सके। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का नाम है, परंतु छुपके अप्रत्यक्ष रूप से है। तो राधा रानी कौन है? कौन है राधा रानी?
भगवान का विस्तार,
भगवान का
पहला विस्तार,
भगवान का पहले विस्तार बलराम नहीं है?
बलराम भी है लेकिन भगवान से पहले शक्ति, शक्ति।
तो बलराम और राधा रानी में अंतर क्या है? बलराम भी विस्तार है, राधा रानी भी विस्तार है, तो बलराम और राधा रानी में अंतर?
बलराम भी सेवक है लेकिन सबसे ऊंचे सेवक राधा रानी।
बलराम अच्छे सेवक नहीं?
लेकिन उनसे भी अच्छे,
उनसे भी अच्छे। और कोई बात, बलराम और राधा रानी में अंतर क्या?
एक आत्मा मतलब दो देह, वो राधा और कृष्ण कल्लापुर।
लेकिन तत्व में अंतर क्या है?
शक्ति और शक्ति, ये
कौन शक्ति कौन शक्तिमान?
राधा रानी शक्ति शक्तिमान, राधा रानी शक्तिमान।
तो बलराम कौन है?
शक्ति,
शक्तिमान है, वो भगवान है। भगवान अर्थात वो विष्णु तत्व है। श्री कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं, तो श्री कृष्ण शक्ति के उद्गम है, तो बलराम भी शक्तिमान ही है। परंतु श्रीमती राधा रानी शक्तिमान है कि शक्ति है?
शक्ति,
शक्ति है। तो बलराम और राधा रानी में मुख्य अंतर क्या है? बलराम शक्तिमान है, विष्णु तत्व, और श्रीमती राधा रानी शक्ति है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। तो परम सत्य कौन है? परम सत्य कौन?
कृष्ण।
तो कोई बोलते हैं कि अरे जिनको पुरुष दे है ना, वो चाहते हैं अरे भगवान पुरुष है, बड़े अच्छा हो गया। जो माताजी शरीर में, वो सोचते अरे भगवान माताजी होना चाहिए था, भगवान माताजी क्यों नहीं है, ये बेपक्षपात हो गया। अब ये संसार में पुरुष भी है स्त्री भी है, तो भगवान के अंदर सब कुछ होना चाहिए। जब भगवान पूर्ण है तो पूर्ण का मतलब है कि सारे संसार के द्वंद्व भी उनमें सम्मिलित होने चाहिए। तो ये परम सत्य केवल पुरुष क्यों है? आप ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं? केवल पुरुष मतलब भगवान अपूर्ण है क्या? फिर कौन बताएंगे?
भगवान है ना, भगवान और उनकी शक्ति जिसमें अंतरंगा तटस्थ शक्ति सब और उनकी प्रकृति सब मिलाकर परम सत्य होता है। तो लेकिन विशेष करके भगवान की अंतरंग शक्ति और स्वयं भगवान श्री कृष्ण यानी कि राधा कृष्ण पूर्ण सत्य कहना चाहिए।
तो भगवान अपने शक्तियों को मिलाकर वो परम सत्य कहलाते हैं। यदि शक्तिमान है परंतु शक्ति नहीं है तो क्या मतलब है कि नहीं? कोई कोई मतलब है क्या? ऐसे जैसे कोई राजा है, बोलते ये बड़ा राजा है, लेकिन राजा की सेना नहीं है, राजा का राज्य नहीं है, राजा के पास कोई महल या धन नहीं है, राजा के पास कोई प्रजा नहीं है, राजा के पास कोई रानियां नहीं है, तो भाई किस काम का राजा है ये? कैसा राजा है ये, है कि नहीं? राजा के पास कुछ नहीं है तो फिर राजा कैसे हुआ? क्या मतलब राजा राजा होने का? राजा का मतलब तब होता है जब उसके पास ये सब चीज़ें रहती हैं। धन होना चाहिए, महल होना चाहिए, प्रजा होनी चाहिए, राज्य होना चाहिए, कुछ भी नहीं है फिर राजा किस काम का? उसी प्रकार से यदि भगवान है लेकिन भगवान के पास कोई शक्ति नहीं है, किस तरह के भगवान हैं? यदि अग्नि अग्नि है, अग्नि की कोई उष्णता नहीं है, फिर किस तरह का अग्नि? अग्नि का क्या फायदा? सूरज है लेकिन सूरज की किरण नहीं है, तो किस प्रकार का सूरज है ये? बराबर। तो उसी प्रकार से भगवान है, उनकी शक्ति नहीं है, तो फिर किस तरह के भगवान? क्या सूरज और सूरज के किरणों को हम अलग कर सकते हैं? जब सूरज की बात करते हैं तो सूरज के गोला और सूरज की किरणें दोनों साथ में मिल के हम सूरज की बात करते हैं, है ना? उसी तरह से अग्नि और गर्मी दोनों साथ में है। उसी प्रकार से भगवान जो शक्तिमान है और उनकी परम शक्ति जो राधा रानी है, राधा कृष्ण को मिलाकर ये परम सत्य है, ये संपूर्ण दृष्टि है परम सत्य की। नहीं तो भगवान परम सत्य को केवल कृष्ण कहेंगे तो ये अपूर्ण हो जाएगा। वैसे एक दृष्टि से कहा जाए तो ये सही है, क्योंकि कृष्ण के स्वतंत्र कुछ नहीं है, कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, तो शक्ति भी कृष्ण की ही है। उस दृष्टि से कहा जाए तो श्री कृष्ण परम सत्य है, ये कहना सही है। परंतु श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, उनकी परम सत्य के दो पहलू होते हैं, पुरुष पहलू और स्त्री पहलू। तो श्रीमती राधा रानी उनके स्त्री पहलू हैं और श्री कृष्ण पुरुष पहलू। इस प्रकार से राधा कृष्ण एक सत्य हो जाते हैं। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर भादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौतौ। चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि राधा कृष्ण प्रणय, प्रणय मतलब प्रेम, तो राधा कृष्ण के बीच में जो प्रेम का संबंध है वो कैसा है? विकृतिर लादिन शक्ति रस्मात्, जो भगवान की अंतरंग का दिव्य आनंद प्रदान करने वाली शक्ति है लादिनी शक्ति, ये इसका प्राकट्य है। तो राधा और कृष्ण के बीच में संबंध ये संसार के पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध के समान नहीं है, वो दिव्य लादिनी शक्ति का आदान प्रदान है। इसलिए राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रस्माद एक आत्मनो। कविराज गोस्वामी कहते हैं एक आत्मा है दोनों, राधा और कृष्ण एक आत्मनो अपि भुवि पुरा। इसलिए फिर भी यहाँ पर भौतिक जगत में इस पृथ्वी में बहुत लंबे समय से उन्होंने क्या किया, देह भेदम गतौतौ। एक आत्मा है परंतु उन्होंने दो देह धारण कर लिए, दो रूप धारण कर लिए, एक कृष्ण एक राधा। तो परम सत्य एक ही है परंतु दो रूप धारण किए, किसके लिए? प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, दिव्य रसों का अनुभव करने के लिए। हाँ, तो इस प्रकार से राधा रानी कभी कृष्ण से अलग नहीं की जा सकती, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें सूर्य से कभी अलग नहीं किए जा सकते। तो राधा कृष्ण एक है, कृष्ण परम शक्तिमान है, श्रीमती राधा रानी परम शक्ति है। तो जैसे परम शक्तिमान से सारे अन्य शक्तिमान विष्णु तत्वों का उद्गम होता है, जैसे बलराम है, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, राम, नरसिंह, मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि, जितने भी सारे रूप है भगवान के, वो अंततः किन से आते हैं? भगवान कृष्ण से आते हैं, सीधे आते हैं, उनके अंश हैं या अंशों के अंश हैं या अंशों के अंशों के अंशों के अंश, ऐसे। तो जितने भी विष्णु तत्व हैं, शक्तिमान तत्व हैं, वो परम शक्तिमान कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जितने भी शक्तियां हैं वो सब परम शक्ति श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। तो आध्यात्मिक जगत में और कौन सी शक्तियां हैं बताइए?
लक्ष्मी,
लक्ष्मी देवी है वैकुंठ लोकों में, और ठीक है
भू
नहीं, और व्यक्ति जैसे
दुर्गा देवी, भू देवी, दुर्गा
देवी, दुर्गा देवी भौतिक जगत में, जैसे योग माया है,
नीला,
गोपियां हैं, अन्य गोपियां हैं वृंदावन में, फिर वैकुंठ की लक्ष्मियां हैं, द्वारका की रानियां हैं, ये सारे के सारे अंततः श्री कृष्ण से राधा रानी से उत्पन्न होते हैं। तो जितने भी शक्तियां हैं वो सब श्रीमती राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। और दुर्गा देवी यहाँ कौन है, वो छाया है, उनकी योगमाया शक्ति, योगमाया शक्ति आध्यात्मिक जगत में, और योगमाया की छाया महामाया दुर्गा देवी, और योगमाया कौन है, वो श्रीमती राधा रानी के विस्तार है। तो जो भी शक्ति तत्व है वो सब श्रीमती राधा रानी से आते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी शक्तिमान किनसे आते हैं, कृष्ण से, जितने भी शक्तियां हैं राधा रानी से, और शक्ति और शक्तिमान मिला के संपूर्ण हो जाता है।
हम भी शक्ति हैं, तो हम कृष्ण से आते हैं कि राधा,
हम कृष्ण से आते हैं कि राधा से आते हैं, बोलो, हम अंतरंगा शक्ति हैं कि बहिरंगा शक्ति हैं, तटस्था शक्ति है, परंतु गुणवत्ता में हम क्या है,
शक्ति है तो
आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है ना, चित्त शक्ति के बने हुए ना, जड़ शक्ति के तो नहीं है। भगवान के तीन शक्तियां हैं, एक है चित्त शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, दूसरा है माया शक्ति जिससे भौतिक जगत बनता है, और तीसरा है जीव शक्ति। तो वैसे गुणवत्ता में जीव शक्ति चित्त शक्ति का अंश है, परंतु माया शक्ति के प्रभाव में आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि वो तटस्थ माना जाता है। तो जीव आत्माएं जो हैं ये शक्तिमान से उत्पन्न होती हैं, शक्ति से नहीं, शक्तिमान के ये शक्ति हैं। ये जो भौतिक शक्ति क्या है, ये राधा रानी, वैसे ये शक्ति तो अनंत काल से है, सनातन रूप से है, परंतु इसकी जो मूर्तिमान देवी हैं वो छाया है योग माया की, परंतु जो जीवात्माएं हैं वो भगवान से उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से है श्रीमती राधा रानी का स्थान बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। श्रीमती राधा रानी जैसे कोई भक्त नहीं है। यदि हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी है तो हमारी सेवा कौन पहुंचाते हैं कृष्ण के पास, श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त हमारे पास और कोई उपाय नहीं है श्री कृष्ण के पास जाने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी को हम प्रसन्न करेंगे तो वो हमारी सेवा को कृष्ण के पास ले जाएंगी, और वो जब अनुमोदन करेंगे, सिफारिश करेंगी हमारे, कह रहे देखिए स्वामी ये भक्त है ना गोकुल धाम के, ये बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इसलिए इनको आप स्वीकार कीजिए, फिर श्री कृष्ण मना नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो तो मैं करूँगा जरूर। इसलिए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लिया तो कृष्ण को प्रसन्न कर लिया। राधा रानी मूर्तिमान भक्ति है, कृष्ण प्रेम है। और श्रीमती राधा रानी का जन्म कौन से दिन पर हुआ, तिथि भद्र शुक्लाष्टमी, भद्र महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि पर। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ, भद्र कृष्ण अष्टमी, श्रावण में, भद्र में, हमारे कैलेंडर के हिसाब से भद्र में। तो दोनों में कितने दिन का तिथि में कितना अंतर,
15 दिन
का लगभग, परंतु आयु में कितना अंतर दोनों में,
एक साल
14 दिन। तो श्रीमती राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म वर्ष के बाद वाले वर्ष में हुआ। तो यदि इस साल में यदि कृष्ण का जन्म हुआ भद्र कृष्ण अष्टमी पे, तो उस साल में नहीं, आने वाले साल में, अगले साल में राधा रानी का जन्म हुआ। तो श्री कृष्ण राधा रानी से कितने बड़े हैं, एक वर्ष और 14-15 दिन, लेकिन ये केवल प्रकट लीला में है, लेकिन नित्य लीला में श्री कृष्ण की आयु क्या है? कल हमने बताया, सुना,
15 साल 4 महीने 7 दिन।
और राधा रानी का
14 साल 2 महीने 14 दिन।
तो दोनों में अंतर है 1 साल और 7 महीने का, लगभग थोड़ा कम 7 महीने से। तो राधा रानी लगभग 14 साल 2 महीने और कुछ दिन, और श्री कृष्ण 15 साल 9 महीने और कुछ दिन। तो दोनों में अंतर कितना हुआ? लगभग 1 साल और 7 महीने का। वो रोक वृंदावन नित्य लीला में, वहाँ पे उनका वही आयु रहता है।
कब किया था, वहाँ नहीं करते,
वो यहाँ पे आके करते हैं ना, सब यहाँ पे आके करते।
वहाँ पे माता इष्ट लीला में नहीं
रहते, वो बाल लीला वगैरह वो तो एकदम कुछ में रहता है, भाव में रहता है। वहाँ पे कृष्ण और राधा रानी वही साथी, इतना अच्छा होता है ना, बाल सफेद नहीं हमारा होता, हम वही उम्र में रह जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन ये भौतिक शरीर में संभव
नहीं,
नहीं है। और राधा रानी का जन्म कैसे हुआ?
कमल फूल के ऊपर।
तो वृषभानु महाराज गए थे यमुना में स्नान करने के लिए, तो वहाँ एक सहस्र पंखुड़ी वाले एक कमल पुष्प जो हजार हजार सूर्यों के समान प्रकाशमान था, वो उनके पास में आया, उनको स्पर्श किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की थी ध्यान में, स्पर्श करने से आचार्य को ने आंखें खोली, देखा ये क्या है, एकदम प्रकाशमान कमल पुष्प है। और फिर आश्चर्य क्या हुआ, उसके बीच में छोटी सी बच्ची है जिसके पिघले हुए सोने की कांति है उसके शरीर की। तो बड़े प्रसन्न हुए, फिर ब्रह्मा जी ने आके उनको दिया कि ये लो। फिर ऋषभानु महाराज बड़े संतुष्ट हो गए, फिर अपने घर में लेकर गए, कीर्तिदा देवी उनकी पत्नी थी उनको दिखाया, वो बहुत खुश हो गए। ये एक वैसे बहुत और अन्य लीलाएं भी हैं उनके जन्म के बारे में, ये सबसे संक्षेप वाला है और अधिकतर लोग ये मानते हैं। और राधा रानी के और कोई भाई बहन?
श्रीदाम
बड़े भाई, छोटे भाई?
बड़े
भाई हैं। और बहन है क्या?
अनंग
मंजरी, छोटी बड़ी?
छोटी।
तो ऋषभानु महाराज और कीर्ति देवी के
तीन
संतान, श्रीदाम, राधा रानी, अनंग मंजरी। और जब जन्म हुआ राधा रानी का तो क्या उनकी दशा थी?
आंखें
बंद थी, देख नहीं रही थी, सुनती थी
नहीं,
बोलती थी
नहीं।
तो फिर ऋषभानु महाराज को बड़ा दुख हुआ, कीर्तिदा देवी को भी, अरे इतनी सुंदर बच्ची है लेकिन अंधी है, बहरी है, गूंगी है, क्या करें। तो श्री कृष्ण जब आए थे नंद महाराज और यशोदा मैया के साथ, जब कृष्ण पास में आए, उन्होंने स्पर्श किया, तब उनकी आंखें खुल गई, तब उन्होंने बात करना, सुनना, बोलना सब शुरू किया। क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने तय किया था कि जब श्री कृष्ण आएंगे उन्हीं को पहले मैं देखूंगी, उनके देख के देखने से पहले और किसी को नहीं देखूंगी। तो गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण राधा रानी से बोला था, चलो हम भौतिक जगत में जाते हैं, वहाँ लीला करने का समय आ गया है। तो राधा रानी बोले, नहीं नहीं और किसी को मुझे देखना नहीं है, केवल आपको देखना है। बोले ठीक है, मैं तो रहूँगा ही साथ में। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो उपाय क्या निकला कि ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन मैं तब तक मैं आपको ही पहले व्यक्ति आप होंगे जिनको मैं देखूंगी और किसी को नहीं देखूंगी। तो इसलिए जब राधा रानी का जन्म हुआ तो देख नहीं रहे थे, और जैसे कृष्ण पास में आए उनको समझ में आया, उन्होंने आंखें खोल दी। तो ये रहस्य है राधा रानी के जन्म के बारे में। वैसे इसके पहले नारद मुनि ब्रज में आए थे, तो नारद मुनि इधर उधर ना जानते हैं, जहाँ भी कुछ होता है नारद मुनि तो होते ही हैं, उधर देखना चाहते क्या हो गया। तो वो नंद महाराज के घर में गए, वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण को शैया पर लेटते हुए देखा तो बहुत भाव विभोर हो गए, खूब स्तुति की उस बच्चे की, और नंद महाराज से कहा कि आपको अभी इनकी बहुत सेवा करनी चाहिए, अभी दुनिया की आशा छोड़ दो, केवल इस बच्चे को प्रेम करो, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और फिर वो सोचने लगे नंद महाराज के घर को छोड़ने के बाद कि जब ये हरि श्री हरि आए हैं यहाँ पर तो उनकी जो नित्य संगिनी है वो भी आई होंगी कहीं तो व्रज में, तो कैसे ढूंढो अभी उनको। तो सारे व्रज में वो ढूंढने लगे हर एक घर में जाके कि यहाँ आपके घर में कोई नवजात शिशु है क्या, अभी अभी जन्म लिए हुए कोई बच्चा है क्या। तो कभी होता तो कभी नहीं होता, होता तो बच्चे को दिखाते, नारद मुनि देख के उनको थोड़ा आशीर्वाद देके चले आते, उनको समझ में आता ये बच्चा अब साधारण बच्चा है, साधारण मतलब भगवान नहीं है या राधा रानी नहीं है। फिर अंततः पहुंच गए वृषभानु महाराज के घर में, वृषभानु महाराज ने स्वागत किया, फिर उन्होंने पूछा नारद मुनि ने कि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं क्या, तो उन्होंने श्रीदाम को लेके आए सामने, ये मेरा बेटा है। तो नारद मुनि आश्चर्यचकित हो गए उसको देखकर, खूब आलिंगन किया उसको और कहा कि ये बच्चा साधारण नहीं है, ये दिन रात कृष्ण और बलराम के साथ में खेलेगा, इसलिए इसका ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना, कृष्ण बलराम का बहुत घनिष्ठ मित्र बनेगा ये। और फिर नारद मुनि जा रहे थे तो फिर विश्वभानु महाराज ने बोला नहीं नहीं जाइए मत जाइए, बैठिए, और कुछ बात थी आपको बताने के लिए मैं हिचकिचा रहा था, कुछ संकोच था मन में, क्यों क्या बताना था, क्या संकोच था। बोले मेरी एक बच्ची भी है, छोटी लड़की है, लेकिन क्या है कि वो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, इसलिए मैं आपके सामने लाने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब आप आए हैं आप इसके ऊपर उसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि वो ठीक हो जाए, आपके आशीर्वाद से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फिर नारद मुनि को वो ले गए और वहाँ पे छोटी राधा बालिका रूप में वहाँ पर थी, तो नारद मुनि ने देखा और आश्चर्यचकित हो गए, उसको अपने गोद में ले लिया और समझ में आया उनको कि ये वही है। उन्होंने सोचा कि जो मुझे अभी अचानक इस बच्ची को देखने से ही श्री गोविंद के प्रति मेरे हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो रहा है इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, आज तक मुझे इतना प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हुआ ही नहीं, लेकिन इस बच्ची को देखने मात्र से अचानक मेरे हृदय में न जाने क्यों इतना प्रेम उत्पन्न हो गया गोविंद के प्रति, और इसके जैसा सौंदर्य कहीं नहीं देखा हमने। तो ना महालक्ष्मी भी, वैकुंठ में भी लक्ष्मी भी इतनी सुंदर नहीं है, तो अन्य भौतिक जगत की जो महिलाएं हैं, चाहे वो पार्वती देवी हो, चाहे वो और इंद्रदेव की पत्नी शची देवी हो, या जो भी हो, इनके सामने तो कुछ भी नहीं है सारे। तो फिर ऐसे भाव विभोर हो गए वो, तो उनको फिर उन्होंने सोचा कि मुझे तो इनसे इनकी प्रार्थना करनी चाहिए। तो उस समय वृषभानु महाराज थोड़े बाहर गए होंगे क्योंकि नए बच्ची हैं तो सब लोग बधाई देने के लिए आते हैं ना, तो बहुत सारे अतिथि आ रहे थे जा रहे थे, तो उनसे भी बात करना था। तब नारद मुनि अकेले थे इस बच्चे के साथ, उन्होंने उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया, खूब प्रार्थना की उनकी, आप महायोग स्वरूपिणी हैं और आप गोकुल विहारी श्री कृष्ण के अर्धांगिनी हैं, नित्य संगिनी हैं, फिर बहुत कुछ स्तुति की उनकी। और फिर अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि कृपया आपका किशोरी रूप हमको दिखाइए। वैसे गोलोक वृंदावन में भगवान का किशोर रूप 15 साल जो हमने बताया ना 9 महीने, और श्रीमती राधा रानी का किशोरी रूप 14 साल 2 महीने, ये नित्य है उनकी अवस्था। तो वहाँ पे वो है किशोर किशोरी, युगल किशोर, नव किशोर, नव किशोरी या नवल किशोरी, किशोर और किशोरी। किशोर मतलब कौन?
कृष्ण,
जो पौगंड और यौवन के बीच में आता है, बाल्यावस्था, पौगंड अवस्था, किशोर अवस्था और यौवन अवस्था। तो पौगंड और यौवन के बीच में साधारण लोगों के लिए ये लगभग 11 से 15 साल का जो की आयु होती है वो किशोर अवस्था मानी जाती है। तो वो नित्य रूप से वैसे ही रहते हैं। तो श्रीमद श्री नारद मुनि जी राधा रानी का नित्य किशोरी रूप देखना चाहते थे, तो उन्होंने प्रार्थना की। उसके लिए फिर उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान करना शुरू कर दिया। तो श्रीमती राधा रानी को भी कृष्ण का गुणगान सुन के बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने फिर अपना किशोरी रूप दिखाया। और जैसे ही किशोरी रूप प्रकट हो गया तो उनके साथ जितने भी सखियाँ हैं वो भी प्रकट हो गई, और इस दृश्य को देखा नारद मुनि ने सहन नहीं कर पाए, बेहोश होकर गिर पड़े। तो हमारी वो शक्ति नहीं है कि हम दर्शन कर सकें, योग्यता नहीं है। यदि राधा रानी और कृष्ण वो दर्शन देंगे भी, इतने प्रकाशमान है, इतना सुंदर हमको सहन, हम तो बेहोश हो जाएंगे। इसलिए समय से पहले अपरिपक्व अवस्था में, कच्चे अवस्था में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको दर्शन मिल जाए कृष्ण का। दर्शन की योग्यता नहीं है, मिले भी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे उसको। जब नारद मुनि सहन नहीं कर पाए तो हम कैसे सहन कर पाएंगे, हाँ है कि नहीं? तो फिर नारद मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। फिर सखियों ने क्या किया, राधा रानी के चरण कमलों को धोया, अभिषेक किया और चरणामृत छिड़काया नारद मुनि के ऊपर। उसके बाद नारद मुनि को होश आ गए वापस, और सखियों ने कहा कि आज आप कुसुम सरोवर के पास अशोक वाटिका में हमको मिलना, हम सब रहेंगे, और ये जल्दी से प्रदक्षिणा कर लो, दर्शन कर लो हमारे स्वामिनी का, क्योंकि इनका जो रूप है ये दर्शन जो होता है ना, ये बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे बिजली है ना, बिजली चमकती है ना, और चपल है ना, चंचल है, एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए फिर बिजली रहती, फिर बाद में नहीं दिखाई पड़ता। तो उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का ये किशोरी रूप चंद क्षणों के लिए दिखाई देगा, इसलिए फटाफट अभी प्रदक्षिणा कर लो, दर्शन कर लो, फिर वो अदृश्य हो जाएंगी। तो नारद मुनि ने किया और फिर से श्रीमती राधा रानी अपने बालिका स्वरूप में आ गई। और फिर नारद मुनि ने पूरा दंडवत प्रणाम किया था। अब उस समय ऋषि भानु महाराज आ गए अंदर, ये क्या झाला, ये क्या हो गया, हमने तो नारद मुनि को बुलाया था कि वो हमारे बच्चे को आशीर्वाद दे ताकि वो ठीक हो जाए, अब ये तो उल्टा हो गया, ये नारद मुनि प्रणाम कर रहे हैं बच्ची को, ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। तो नारद मुनि सोचा अभी क्या समझाएं, तो ऐसे उनको सांत्वन करो, ठीक है सब, ठीक है ठीक है, ऐसे करके निकल गए। और उसके बाद फिर कृष्ण आए, फिर राधा रानी की आंखें खुल गई, ऐसे सब उनकी लीला फिर हो गई। उनका जन्म स्थान कौन सा था राधा रानी का?
रावल,
रावल। पिता का नाम
वृषभानु,
माता का नाम
कीर्तिदा,
बहन का नाम अनंग मंजरी, भाई का नाम श्रीधाम, ऋषभानु महाराज के पिता का नाम महाभानु, तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का स्थान बहुत ही विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं भागवतम के तात्पर्य में भी, भक्ति रसामृत सिंधु में भी, कि वृंदावन के निवासी वो राधा रानी का आश्रय लेते हैं, क्योंकि राधा रानी फिर अनुमोदन करती हैं श्री कृष्ण से। इसलिए वृंदावन में हम देखेंगे जगह जगह राधे राधे कहा गया है, कृष्ण से ज्यादा वो राधा रानी को मानते हैं। राधा रानी की सेवा करने से वो कृष्ण को, कृष्ण के पास हमें ले जाएंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं हमें राधा रानी की सेवा का अवसर दीजिए, क्योंकि हम आपके दासों के दासों के दास बनना चाहते हैं। भगवान का दासत्व ये केवल श्री राधा रानी का स्थान है, और राधा रानी की सेविकाएं जो है उनका स्थान भी बहुत ऊंचा है। यदि हम उनके सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक बन जाए, बस हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। तो ये आप में से एक एक करके कोई बताइए, जो भी एक पॉइंट आपने सुना क्लास में आज, एक एक जो भी बात, राम विजय, एक बात पर एक एक पॉइंट सब।
राधा रानी एक सहस्र स्वर्ण का जो कमल था उससे
उसके ऊपर प्रकट हुए, ठीक है। ऋषिकेश कोई भी एक बात,
बलराम जी शक्ति है और राधा शक्तिमान है, राधा रानी शक्ति है।
हाँ बहुत अच्छा, एक एक करके बताओ सब लोग।
श्रीमद् 12 स्कंद श्रीमद् भागवतम के है, लेकिन वृंदावन लीला बहुत ही 10वें स्कंद के कुछ अध्याय है। ये सब बताया सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि बहुत सारे अन्य लोग थे ज़्यादा, तो उनको वृंदावन लीला को आकर्षित करने के लिए ये सब उनको बताना पड़ा,
बैकग्राउंड देना पड़ा उस लेवल तक लाने के लिए, स्तर तक लाने के लिए। और कोई बात बढ़िया।
राधा रानी यहाँ प्रकट, भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए, होने के बाद किसी को नहीं देखना चाहती थी सिवाय कृष्ण के। तो जब कृष्ण आके उनको मिले या उनको स्पर्श किया, तब उनके सब आँख मुँह कान उस देख सकी, बात कर सकी और सुन सकी।
बहुत अच्छा, एक एक करके सब बोलते जाइए, जितना देर करोगे बोलने के लिए उतना बोलने के लिए कम रह जाएगा, बाद में मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो जल्दी बोलेंगे उनके लिए आसान हो जाएगा। अपना अपना हाथ ऊपर करके बोलो।
भगवान श्री कृष्ण परम सत्य बनते हैं जब उनकी शक्ति के द्वारा, जिस प्रकार राजा उनके पास जब सैन्य ना हो, राज प्रजा और धन महल इत्यादि ना हो, तो वो राजा कुछ काम का नहीं रहता, किंतु वो पूर्ण बनता है जब इनके पास ये शक्तियाँ होती है, अग्नि भी इनकी ताप गर्मी से उसका ये होता है, और सूरज की किरणों से शक्ति का बनता है। तो उसी प्रकार भगवान की जो शक्तियाँ हैं उससे भगवान पूर्ण शक्ति बनते हैं।
तो भगवान की पूर्णता किसमें होती है, जब वो अपने शक्ति के साथ में रहते। बहुत अच्छा। और
वृंदावन में राधा रानी को प्रार्थना करते हैं ताकि मुझे कृष्ण का सेवा दीजिए, और चैतन्य महाप्रभु का जो अन्य है वो कृष्ण को प्रार्थना करते हैं ताकि मुझे राधा रानी का सेवा मिले, क्योंकि हम उनका भक्तों का दासों का दास बनना चाहते हैं, ये हमारा भाव।
बहुत अच्छा। और
भगवत में राधा रानी का नाम नहीं है, रुपये छोटा मोटा है, क्योंकि
अप्रत्यक्ष रूप से है।
क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा रानी का नाम लेते थे तो भाव में आके मृत्यु हो जाते थे, तो इसके लिए उन्होंने राधा रानी नाम दिया,
भाव में आके
मृत्यु हो जाते
थे, इसीलिए
राधा रानी का नाम।
मूर्छित हो जाते तो क्या समस्या थी? कथा नहीं पूरी होती तो क्या समस्या थी? परीक्षित महाराज के पास समय कम था। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। और
भगवान में हमेशा कुशल अवस्था में रहते हैं। 14 साल जो है और भगवान 15 साल साथ में
9 महीने सदैव रहती है। हम भी ऐसे रह सकते तो अच्छा होता ना, लेकिन वहाँ जाके ऐसे रह सकते, यहाँ पे नहीं। अच्छा, और कोई एक एक करके।
जैसे भगवान श्री कृष्ण से सब विष्णु अवतार आते हैं, उसी तरह से श्रीमती राधा रानी से सब द्वारका की महिषियाँ और लक्ष्मी देवी, ये सब शक्तियाँ आती हैं जो भगवान के लीला में।
बहुत अच्छा। और
कृष्ण के दो पहलू है, कृष्ण के
परम
सत्य है, उसके दो पहलू है, पुरुष पहलू है, एक दूसरा स्त्री पहलू।
कौन है वो?
कृष्ण जो है वो पुरुष पहलू है और राधा रानी जो स्त्री पहलू।
बहुत अच्छा। और
नारद मुनि की लीला में नारद मुनि जब नित्य किशोरी रूप को देखना चाहते थे तो उसके लिए राधा रानी अपना स्वरूप और गोपियाँ उनके सखियाँ सखियों के साथ उनको दर्शन दिए, क्योंकि नारद मुनि मूर्ति खो गए। फिर सखियों ने श्रीमती राधा रानी का चरण अभिषेक किया, फिर वो चरण चरणामृत को जब नारद मुनि को उपस्थित किया तो नारद मुनि देख रहे।
ठीक है, बहुत अच्छा। और
सारे जो जीव हैं और भगवान श्री कृष्ण सारे जीव भगवान श्री कृष्ण से आते हैं।
बहुत अच्छा। और
राधा रानी आध्यात्मिक जगत में योग माया है,
और योग माया है कि
योग माया
नहीं, उनकी विस्तार है। जितनी भी शक्तियाँ हैं, योग माया भी एक शक्ति है, वो श्रीमती राधा रानी से ही उत्पन्न होती है, उनके विस्तार। महामाया कौन है? हाँ, दुर्गा देवी कौन है, मतलब योग माया की छाया है। और योग माया कौन है? राधा रानी के विस्तार है, विस्तार। हाँ, बहुत अच्छा। और हाँ, एक एक करके जिन्होंने नहीं बोला।
राधा शब्द का अर्थ है जिनकी आराधना श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ है।
बहुत अच्छा। और हर्षल ने बोला नहीं, बोला
जो शक्ति और शक्तिमान की नित्य प्राकृतिक लीला है, जहाँ पे वो नित्य और प्राकृतिक लीला है आध्यात्मिक जीवन में, दोनों के बीच में भेद है और आयु का, यहाँ पे जो है आयु का फर्क जो है वो 1 साल 14 महीने और जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे 1 साल 7 महीने।
तो प्रकट लीला में अंतर हो सकता है, आज इस बार ऐसे हुआ, हो सकता है अगली बार भगवान जन्म लेंगे किसी अलग दिन पर लेंगे, हो सकता है, लेकिन नित्य लीला में वैसे के वैसे ही है। बहुत अच्छा। और कोई बात?
राधा रानी का पिताजी का नाम ऋषभानु, उनका पिता का नाम महाबानु और उनका माँ का नाम प्रीतिदा, उनका भाई का नाम श्रीधामा और उनका बहन का नाम
अनंग मंजरी। बहुत अच्छा। और हाँ, सूरज
राधा रानी भक्ति की मूर्तिमान,
भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है। बहुत अच्छा। अनिका है आता तू कहाँ?
भगवान कृष्णा शक्तिमान है और राधा रानी शक्ति है, शक्तिमान और शक्ति मिलके पूर्ण।
अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शक्तिशाली उत्तर दिया। अभी आप दोबारा भी बोल सकते हैं, एक बार आपने बोला और भी बोल सकते हैं, जो पॉइंट अभी तक बोले नहीं गए।
कृष्ण परम सत्य है, लेकिन वो अपने प्रेम का आस्वादन करने और लीलाओं का आस्वादन करने के लिए स्वयं को इस धरातल पे दो रूप में विस्तारित करते हैं, वेदांत और कृष्ण।
केवल धरातल पे या सब जगह? बोलो प्रणाम।
सब जगह।
तो परम सत्य एक है, परंतु रस के आस्वादन करने के लिए वो एक दो रूप में हो गए। एक आत्मनो, एक आत्मा है, फिर भी भेद भेद देह भेदम घटवतो, तो देह का दो रूप में प्रकट हो गए। और
हमारी कृष्ण को आराधना है, वो राधा रानी ही अर्पण करती है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हम कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी का सेवा हमें प्रदान करें।
तो दोनों ही है, तो हम राधा रानी के बिना श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते, और साथ साथ हम कृष्ण को भी प्रार्थना करते हैं कि राधा रानी की सेवा दो, उनके सेवकों की सेवकों की सेवा।
जब परीक्षित महाराज को सुखदेव मुनि भागवतम सुनाने वाले थे, सुना रहे थे, उस वक्त राधा का नाम लिया नहीं गया। क्यों नहीं लिया गया? तो अगर राधा का नाम लेते तो वो भाव विभोर होके ये भागवतम हमको सुनने के लिए नहीं मिलता, और हम भागवतम अभी इसका अभ्यास नहीं कर सकते थे, और हम जो भगवान का जो भगवान का धाम हमें जाना जो ये रास्ता है वो सही नहीं मिल सकता।
बहुत अच्छा। और
अनाया आराधिता ये श्लोक में
कौन सा श्लोक?
ये अनाया आराधितो
किसने लिखा?
गोविंदा अनाया आराधितो यन्ना विहाय
भगवान हरिश्वरः यन्नो विहाय गोविंदा कृतो
याम
कृतो याम
अनयत रहः अनयत रहा, अन्यत नहीं अनयत, अनयत रहा। क्या मतलब इसका?
पहले लाइन में आप बोल रहे थे जिसके कारण पूजनीय है कृष्णा,
जिसके द्वारा श्री कृष्ण सर्वोत्तम रीति से आराधित है, उस गोपी को श्री कृष्ण एकांत स्थान में ले गए और हम सबको छोड़ दिया गोविंद ने, तो अनया करके वो तो उसका नाम नहीं लिया होता, तो नाम कहाँ आता है? आराधित शब्द में।
आचार्यों की टीका के द्वारा ही हम जान पाए कि शुरू के राधा रानी का नाम भागवत में आया है प्रत्यक्ष रूप से। बहुत उचित टीका की आवश्यकता।
और क्या?
नारद मुनि जो है राधा रानी को जब देखा और स्पर्श किया, तुरंत उनको कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम उत्पन्न हो गया, तुरंत उनको पता चल गया ये कोई साधारण नहीं, ये स्वयं राधा रानी है। तब उन्होंने जब ऋषभानु जो है उनका घर में प्रोग्राम रहने के कारण सब लोग आ रहे थे इसलिए वो बाहर गए थे, उन्होंने इधर रह के फिर पूरा प्रार्थना किया, प्रार्थना करके पूरा प्रार्थना करने के बाद उनको पूछा आपका जो किशोरी रूप है वो मैं दर्शन देना चाहता हूँ। फिर राधा रानी ने उसको उनको उनका पूरा संगियों का साथ उन्होंने उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद वो भाव विभोर होके वो मूर्छित हो गए। तो उसमें हमको ये समझना है कि हम लोग ऐसा नारद मुनि को ही देखने के बाद मूर्छित होके गिर जाते हैं, तो हम राधा और कृष्ण को देखने के लिए अभी प्रयास नहीं करना है क्योंकि हम उसके लिए योग्य नहीं है अभी। तो फिर बाद में बोला वो ऐसे ही गिरे थे, तो फिर सडनली तब ऋषभानु आए और उन्होंने देखा अरे क्या हो गया, आशीर्वाद देने के लिए बोला था मगर ये तो मूर्छित हो गिर गए,
दंडवत कर रहे हैं बच्ची को।
दंडवत कर रहे फिर बाद में
ठीक है। हाँ
श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है,
कृष्ण पुरुष पहलू है और श्रीमती राधा में स्त्री
किनके परम शक्ति और कोई निकालिए मतलब बर्तन में से अंदर से निकालते हैं फिर ऊपर रह गया क्या 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 रह गया अपने अंदर में जाके निकालिए
कृष्ण का जन्म भद्र कृष्ण अष्टमी को हुआ और राधा रानी का जन्म दूसरे साल भद्र शुक्ल अष्टमी
बहुत अच्छा तो कितना अंतर एक साल 14-15 दिन बहुत अच्छा
शुक्रदेव गोस्वामी जो है एक बार राधा रानी का नाम लेने से ही इतना भाव विभोर होते थे तो फिर नवस्कंद बोलने के बाद और भागवतम में बहुत कम जगह में क्यों उन्होंने कृष्ण लीला को ये दिया तो वो प्रश्न जब इसका उत्तर ये है कि वो जगह में योगी वैरागी ज्ञानी मायावती सब लोग थे तो सब लोग को साथ में लेके जाने के लिए तो उन्होंने प्रारंभ से शुरू करके उनको लास्ट में परम सत्य को लेके इसलिए उन्होंने
बहुत अच्छा
श्रील प्रभुपाद जी कहते थे और तात्पर्य वर्णन करते हैं कि ब्रजवासियाँ श्रीमती राधा रानी की आश्रय लेते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी ही कृष्ण को हमारे प्रति रिकमेंडेशन इसलिए वृंदावन में जाएंगे तो श्री राधे राधे राधे
बहुत अच्छा अनिका और एक दो पॉइंट फिर समाप्त सोचो अंदर थोड़ा निकालो
बाहर का पॉइंट
है
किधर किशोर प्रभु ने बोला हमारी योग्यता नहीं है नित्य किशोर और नित्य किशोरी रूप देखने का जब तक ये योग्यता नहीं मिलता तब तक ये किशोर को देखो
वो किशोर को फिर वो मायावाद हो जाएगा यह बहुत अच्छा उत्सव मनाया आपने ये कब तक अभी भोपला खाओगे कभी इसको ककड़ी कभी खाओगे ये पके हैं कि नहीं पके हैं ना पेरू पके हैं
कुछ कुछ पके कुछ कच्चे
इसको अभी
आपको समझना है
सब्जी बना के भगवान को ऑफर कर सकते हैं
वेल डिपेंड करता है कि आपने ऑफर ऑलरेडी किया हुआ है कि नहीं प्रसाद रूप में उनको
क्योंकि भोपला उसको पकाए बिना खा नहीं सकते पेरू तो ऐसे ही खा सकते हैं लेकिन फिर उसको
ऑफरिंग कर लो
उनको तो बस डेकोरेशन के लिए उपयोग किया जाता
है ठीक है कर लो एक बार आपको सुनाया होगा मैंने कि न्यू वृंदावन में शुरुआत के दिनों में वहाँ पे एप्पल के सेब के पेड़ बहुत थे तो कभी कभी सीजन में ऋतु में जब एप्पल आ जाता था तो जाके उधर से लेके करते थे तो एक ब्रह्मचारी था तो उसने सोचा कि अरे क्या बार बार ये उसको रोको ऑफरिंग करो भोग चढ़ाओ तो उसने सारा पहाड़ का पहाड़ ऑफरिंग कर दिया बार बार ये सब भोग भोग लगाने का ये नहीं जब चाहो जब जाके खा लो तो ऐसा नहीं करना है ठीक है कर लो ऑफरिंग बहुत सुंदर किया लेकिन अगली बार प्रयास होना चाहिए कि यहीं के फूल सब लेके आओ ज्यादा से ज्यादा यहीं से जो होता है वही लेके आओ गन्ना भी यहाँ का है बहुत अच्छा तो कथा अभिषेक फीस्ट कीर्तन
दृष्टि भी निकला अभी दृष्टि निकालने का भी ये कर रहे हैं अंदर से भगवान का अभिषेक के बाद भी भगवान और एक ये होता है उनका दृष्टि निकालना होता है बहुत सारा ये है इसमें 30 एटम ये करना पड़ता है भगवान को 30 प्रकार का उपचार देना पड़ता है तो हम करने का प्रयास कर रहे हैं
बहुत अच्छा छान छान हरी बोल तो कितने सारे उत्सव आते रहते हैं आनंद ही आनंद है कि नहीं बस दिन भर सेवा करो आनंद से कोई खेती में कोई किचन में कोई बैल के साथ कोई कहीं कोई कहीं और फिर जप कीर्तन थोड़ा उत्सव फिर सेवा बस ऐसे आनंद से जीवन बिताओ हाँ
पीस
समय समय पर
बेलगाम मंदिर से भक्तों ने प्रसाद भेजा समझो बांटने
अच्छा लेकिन सबके लिए हो जाएगा क्या इतना
हो जाएगा